नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान के साथ दो सप्ताह के अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। ये घोषणा उनके द्वारा दी गई उस समय सीमा से ठीक पहले आई है जिसमें उन्होंने ईरान के बुनियादी ढांचे पर भीषण हमले की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों को द्विपक्षीय युद्ध विराम पर सहमत होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अमरीका अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है और संघर्ष सुलझने के करीब है। इससे पहले कल रात राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते को पूरा न करने पर ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी दी थी। उन्होंने इसके लिए आज सुबह 5:30 बजे तक का समय निर्धारित किया था। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने कहा है कि अगर ईरान पर हमले बंद कर दिए जाते हैं तो वो युद्ध विराम के लिए सहमत हैं। उन्होंने बताया कि दो सप्ताह की अवधि के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन संभव होगा। इस बीच दो सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 5.8% गिरकर करीब $103 प्रति बैरल पर आ गया है। रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए लाए गए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वीटो कर दिया है। 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहरीन के प्रस्ताव पर मतदान किया। परिषद के 11 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया जबकि रूस और चीन ने इसके विरोध में अपना वीटो अधिकार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और कोलंबिया इस मतदान से दूर रहे। रूस और चीन द्वारा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। विदेश मंत्रालय ने ईरान में तेजी से बदलती परिस्थितियों के बीच सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें और किसी भी आवाजाही से बचें। मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के भीतर और सीमा चौकियों तक किसी भी प्रकार की आवाजाही भारतीय दूतावास के साथ समन्वय और निर्देश प्राप्त करने के बाद ही की जानी चाहिए। इस बीच ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद भारतीय नागरिकों को अगले 48 घंटे तक वहीं रहने की सलाह दी है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वो सभी बिजली के उपकरणों, सैन्य प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला इमारतों से दूर रहें, घर के अंदर रहें। दूतावास से मोबाइल नंबर 9891281115 और 9891281019 से संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति सामान्य है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ा दी है। प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए प्रतिदिन 19 किलोग्राम क्षमता वाले 180 सिलेंडरों के स्थान पर 360 सिलेंडर आवंटित किए गए हैं। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल समाप्त हो गया। असम की 126, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए कल एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य की जेल और सुधार गृह में कड़ी निगरानी के आदेश दिए हैं जिससे जेल परिसर के भीतर से चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा को रोका जा सके। सुरक्षा बनाए रखने के लिए पेरोल, फरलो या अस्थायी रिहाई 6 मई तक निलंबित कर दी गई है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एजेंटों की बैठने की व्यवस्था के संबंध में कोई नया दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। आयोग ने मीडिया द्वारा प्रसारित कुछ संदेशों का संज्ञान लिया है जिनमें दावा किया गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के मतदान एजेंटों को चुनाव के दिन पोलिंग बूथ के अंदर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मौसम विभाग ने कल तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज बिहार, झारखंड और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की आशंका व्यक्त की है। वहीं विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक वाले तूफान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रन से हरा दिया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में कल शाम बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ और इसे 20 ओवर से घटाकर 11 ओवर का कर दिया गया। राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 150 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।